ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तिश्राय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवत स्कंध 7 अध्याय 1 श्लोक नंबर 27। यथा वैरानुबंधेन मर्तन्मयताम् यात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मते। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मते। ऊपर के श्लोक में क्या है? तन्मयता। इसीलिए शंका हो रहा था उसमें। यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यथा जिस तरह वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से मर्त्यः व्यक्ति तत्मयता उनमें तलीनता या प्राप्त कर सकता है नहीं तथा उसी तरह भक्ति योगे न भक्ति से इति इस प्रकार मैं मेरा निश्चिता निश्चित मत है मत विचार। अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। कृपा करके इस अनुवाद को मेरे पीछे बोलिए। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। कथा को फिर से याद कीजिए कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को इससे पहले वाले श्लोक में जोर दिए कि प्रेम से भी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ठीक उस श्लोक के तुरंत बाद ही नारद जी यह निर्णय देते हैं कि मैं, जहाँ तक मेरी मति है, मेरा विचार है कि जितनी तल्लीनता वैर भाव से, मतलब याद किया जा सकता है या भक्ति की जा सकती है वैर भाव से, उतनी तल्लीनता प्रेम भाव से नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा विचार है, नारद जी कह रहे हैं। अब हम लोग इस विचार, इस बिंदु पर विचार करें। नारद जी ने तो भक्ति सूत्र लिखे हैं और भगवान के 24 अवतारों में इनकी गिनती भी है, लेकिन यह इस निर्णय पर किस उद्देश्य से यह बात कह रहे हैं? जैन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, उनका भाव यह है कि कैसे भी अगर हम प्रेम नहीं कर सकते तो किसी को याद करके गाली देने से भी हम उसके आवेश में हो जाएंगे, उसमें तन्मय हो जाएंगे। भागवत के एक श्लोक के में बताया गया है, अगर किसी को चिढ़ाने के भाव से, किसी की निंदा के भाव से, किसी की अनादर की दृष्टि से, अवहेलना की दृष्टि से, चैन केन प्रकारेण, उस श्लोक के अंदर महात्म्य यह बताया गया है कि अगर किसी भी भाव से, अगर उस अवहेलना की भावना में भी अगर भगवान का नाम आ जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता है। क्योंकि महानता है भगवान के नाम की। इससे पहले वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है लास्ट वाले पैराग्राफ में कि किसी भी भाव से जो शिशुपाल या दंत प्रवक्त्र की भावना थी, उस भाव से भी अगर भगवान को हमेशा याद किया जाए तो आवेश में हम उसी तल्लीनता में हम मस्त रहेंगे। हम लोग भागवत का दसम स्कंद में पढ़ते हैं कंस के चरित्र को कि कंस इतना तन्मयता के साथ भगवान का वैर भाव से चिंतन करता था, उतना कोई प्रेमी भक्त भी उस प्रकार का चिंतन नहीं करता था। उठते सोते बैठते दीवाल पर चारों तरफ उठने से पहले देखता था इधर उधर अपनी भौचक के निगाहों से कि विष्णु इतना चतुर है कि वो किसी भी रूप में आ सकता है और मुझे मार सकता है। आप सोचो कितनी तन्मयता थी। हम लोग प्रयास करते हैं प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाए प्रेम हो जाए, लेकिन बहुत धीमी गति में, उतनी तन्मयता नहीं है, उतनी ही सावधानी नहीं है जितना कि मरने के भय से या वैर भाव से। कंस भय से भगवान से प्रेम किया, भयात गोपियों ने कामात, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि सारे भाव भगवान के अंदर है, सारे प्रेम भगवान के अंदर है। चाहे जिस भाव से हम भक्ति करें, लेकिन यहां दो पक्ष दिया जा रहा है कि बैर भाव से भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन प्रभुपाद जी के उक्ति को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल कट किया है कि जितनी रस है, जय श्री राधा राधिका रमन भगवान की, जितनी रस है प्रेमामय भक्ति में उतनी उस बैराव भावानु भक्ति में उतनी प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भयात, अगर भय से कंस भगवान में तल्लीन रहता था, लेकिन किस लिए? शारीरिक आधार पर। बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया गया है कि कंस अपने शारीरिक धरातल पर अपने शरीर को बचाने के भय से इतना उत्तलीन रहता था कि कहीं विष्णु मुझे मार न दे, कहीं कृष्ण मुझे मार न दे, अपने शारीरिक धरातल पर। लेकिन जो भगवान के प्रेमी जन भक्त होते हैं, अपने शरीर की आहुति दे करके भी भगवान को खुश करना चाहते हैं। बैर भाव में और प्रेम भाव में ये अंतर है कि बैर भाव शारीरिक धरातल पर करके, याद करके बैर भाव शारीरिक धरातल पर बैर भाव से वो तलीन रहते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके प्रेम में तलीन रहते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त जनों में सर्वप्रथम स्थान आता है गोपी जनों का, कि अपने शरीर की चिंता न करके, अपने शरीर की आहुति दे करके भी वो कृष्ण को प्रसन्न रखना चाहती थी। प्रभुपाद जी लिखेंगे इस श्लोक के तात्पर्य में लिखे हुए हैं कि जो प्रेमी जन भक्त होते हैं उनका क्रम विकास, उसका कोई अंत ही नहीं है कि कहां तक वो पहुंचेगा। और बैर भाव से भक्ति करने वाला केवल अपने शरीर के धरातल तक जाएगा कि बस ये शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त। पिछले वाले श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भगवान में समत्व में विभिन्नता नजर आ रही है वह केवल शारीरिक धरातल पर। अगर शारीरिक धरातल से हम अगर ऊपर उठ जाते हैं तो भगवान के स्वभाव में विभिन्नता नजर नहीं आएगी। नजर विभिन्नता की नजर क्यों आ रही है तो हम लोग अभी शारीरिक धरातल पर हैं। इसलिए शारीरिक धरातल से ऊपर उठ करके कृष्ण के प्रेम को हम पहचान सकते हैं। अगर आप भागवत का दसम स्कंद का 31वां अध्याय, जिसको गोपी नाम से, गोपी गीत के नाम से जानते हैं, अगर उस श्लोक उन श्लोकों को अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो एक श्लोक में नहीं, तीन चार श्लोकों में गोपीजन ने भगवान के चरण क्या आशा करती हैं कि मेरे वक्ष स्थल पर, मेरे स्तन पर है कृष्ण अपना पांव रखिए। पिछले वाले इसी गोपी गीत के श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी तो शायद दसम स्कंद के 14वें अध्याय तक ही उन्होंने तात्पर्य लिखा, लेकिन उनके परिकर भक्तों, उनके श्रेष्ठ भक्तों ने, श्रेयर भक्तों ने और श्लोकों के तात्पर्य को लिखे हैं, जिसमें एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गोपीजनों का भाव यह था कहने का, गोपीजनों का भाव यह था कहने का बार बार कि मेरे हे कृष्ण मेरे स्तनों पर आप अपना पांव रखिए, कि आपने लक्ष्मी जी को इस चरण का चरण मतलब वक्षस्थल में दान दिया, अपने चरण की कृपा लक्ष्मी जी को भी दिए और वही चरण की कृपा काली नाग को दिए, तो क्या हमारी स्थिति उन भक्तों से भी गई गुजरी है कि ये चरण को हम अपने वक्षस्थल पर रखने का अधिकारी नहीं है? उनका कहने का भाव यह था कि इन चरणों में सारा प्रेम बसा हुआ है, अगर इस चरण की जो शरण लेगा, जो स्पर्श करेगा, उसका चुम्बन करेगा, उसको स्पर्श करेगा, निश्चित रूप से वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। उनका भाव यह था। आप सोचिए, एक मातृत्व प्रेम के लिए भगवान ने शिशु के लिए एक माँ के स्तनों में दूध दिया है कि उस प्रेम को पी करके शिशु पलता है, तो कितना माँ के स्नेह में और पुत्र के स्नेह में कितना गहरा संबंध होता है। इसी संबंध का संकेत करते हुए कि इससे भी कहीं गहरा संबंध भगवान के चरणों से प्रेम करने वाले प्रेमी भक्तों का। इसलिए प्रेम में जो रस है, प्रभुपाद जी तो आज के भी श्लोक में इसको खंडित करते हैं कि जो बैर से भक्ति करने वाले याद करते हैं, लेकिन जो रस अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करने में है, वो रस प्रतिकूलता में नहीं है। कंस के विचारों को हम लोग देखें भागवत के अंदर, तो कंस को ये पता था कि विष्णु ये कृष्ण मुझे एक ही जन्म में नहीं मारा है और मैं चाह करके भी नहीं बच पाऊंगा इसे, लेकिन हर प्रयास किया बचने के लिए, हर प्रयास किया। और वही कंस वसुदेव जी को उपदेश दे रहा था, फिर वसुदेव जी भी उसको उपदेश दिए कि राजा आपका उपदेश तो ठीक है, लेकिन आप भी तो इस शरीर के बचाव के लिए ये मेरे पुत्र का वध करने के प्रयास में लगे हो। जबकि कोई कितना भी प्रयास करे, मृत्यु टलने वाले नहीं है। आद्यवाद सतांते वाम मृत्यु नाम प्राणिनाम ध्रुवम, आज मरे, 100 वर्ष के बाद मरे, 10 दिन के बाद मरे, 1 घंटे के बाद मरे, लेकिन निश्चित ये टलने वाले नहीं। इसलिए अनवरत जो व्यक्ति प्रेम युक्ति जो अनुकूल की भावना है, उस स्तर से अगर भक्ति करने का प्रयास करता है, तो उसका जो प्रेम है वो सदा सदा के लिए कृष्ण चरणों में बना रहता है। आजकल क्या कोई भी व्यक्ति, शायद होंगे ऐसे ही बिरले कोई तो पता नहीं, कि रावण या कंस या दुर्योधन इस प्रकार के जो नाम है कोई अपने संतान का नहीं रखता? क्या कारण है? क्योंकि ये बैर भाव के संकेतक। क्योंकि इस नाम में भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। रावण शब्द का विचार कीजिए, जो सबको रुला दे उसको रावण कहते हैं। इन नामों में कोई प्रेम ही नहीं है। लेकिन आप प्रश्न कर सकते हैं कि इनका नाम क्यों भागवत में रखा गया? क्योंकि भगवान के पार्षद थे और निश्चित रूप से उनको, उनके हाथ से इनका उद्धार होने वाला था। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं, हम लोगों से तो कई गुना वो श्रेष्ठ थे, तो कोई तुलना ही नहीं। लेकिन विचार करना है इन श्लोकों के शब्दार्थों पर, अर्थों पर, इस प्रकार से कि प्रतिकूलता के भाव को न लेकर के अनुकूलता के भाव को हम अपने जीवन में अपनाएं, तब हम भगवान के प्रेम की जो वस्तु है उसका अवलोकन हम कर पाएंगे, देख पाएंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जब तक तुम प्रेम रूपी अंजन मतलब काजल अपने आंखों में नहीं लगाओगे तब तक मुझे ठीक से नहीं देख पाओगे। देखने की तरीका है भगवान को तो केवल प्रेम, बैर भाव में मिक्स है, बचाने की भी प्रयास है और बचने की भी प्रयास है अपनी, और वो भाव नहीं है जो प्रेम में। प्रभुपाद जी के शब्दों में हम लोग इस श्लोक को समझने का प्रयास करें कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के आधार पर। नारद जी ने तो कह दिया कि निश्चिता मति, हमारी मति इस प्रकार की है कि बैर में भी जो तल्लीनता से भगवान को याद करते हैं उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और ये तो बात नितांत सत्य है। किसी भी भाव से जिसने याद किया वो भगवान का हुआ। हम लोग पढ़ते हैं अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान से यापाय यद्यप्य साधी लेवे गतिमिधात चित्त्याम ततोन्यम कामवा दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान की दयालुता का वर्णन सुनते हैं कि जो बैर भाव से मारने की माँ का स्वरूप धारण करके आई थी, माँ बन करके आई थी पुतना बकी, उसको भगवान ने जब माँ का स्थान दिया तो जो प्रेम से माँ बनी होगी उसको भगवान किस भाव से लेगा बताइए। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को सुने तो मोहित हो गए, भगवान इतने दयालु तो हम उनके शरण में क्यों नहीं जाएं। सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताया जाता है कि वो शुरू शुरू में निराकारवादी थे, जब भगवान के इस दयालुता रूपी स्वरूप को, दयालुता के विषय में जब सुने इस श्लोक को तो उनका भाव बदल गया कि इतना दयालु हो सकते हैं भगवान। प्रेमी जन किस प्रेम से कैसे भगवान को खुश करना चाहते हैं इसी भाव में महाप्रभु कहते हैं कि भक्त की क्रिया मुद्रा जो है पता नहीं चलती कि वो क्या करना चाहते, और सही में भगवान तो कृपा के स्वमूर्ति हैं ही, लेकिन भक्त अपने भावावेश में क्या करना चाहता है और किसी को पता नहीं। आवेश का उदाहरण दिया गया है भागवतम के अंदर भी, या बड़े बड़े कथाकार लोग भी आवेश का उदाहरण देते हैं तल्लीनता का, कि हमें उस प्रकार का आवेश होना चाहिए भगवान के प्रेम में जिस प्रकार की एक इशुकार है। इशुकार का मतलब बाण बनाने वाला, एक बाण बनाने वाला था बहेलिया कि उसके सामने से राजा की सवारी निकल गई बाजे गाजे के साथ धूम धड़ाके के साथ, लेकिन बाण बनाने में वो इतना तल्लीन था, कभी नुकेला करता था, कभी सीधा करता था, कभी उसको ध्यान से देखता था, इतना वो तल्लीन था कि इतने धूम धड़ाके के साथ उसके सामने से राजा की सवारी निकली, लेकिन वो बाण बनाने में ही मस्त था, वो देखा ही नहीं सुना ही नहीं किधर से कुछ निकला। ये है आवेश। इस प्रकार की मति कृष्ण में जिसकी हो जाती है उसके गति में शंका है क्या? दूसरा आवेश, इस उदाहरण को तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उतावला रहता है, वो जा रहा है आवेश में, और कोई जोगी रास्ते में ध्यान लगाए बैठे हुए, और वो गया और उसके पैर से उस साधु के शरीर में लगा, लेकिन उसे ध्यान नहीं लगा, फिर वो संभलते हुए फिर आगे बढ़ गया। उसको यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किसी से टकराया, किसी से ठोकर लगा, इतना आवेश में। यह आवेश अगर भगवान के प्रति हो जाए तो क्या किसी की सदगति में शंका है? कभी भी नहीं। गोपियों का उदाहरण एक ही जगह नहीं, कई जगह दिया जाता है। गोपी शब्द के अर्थ में कथाकार लोग बताते हैं, गो मतलब इंद्रियां और पी शब्द पी अक्षर से है कि पीने वाली, रस लेने वाली। सारे इंद्रियों से जो कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रयास करती थी उनका नाम था गोपी। उनका अपना स्व इंद्रिय सुख का कोई चिंता नहीं था, इसलिए उनको गोपी कहा गया। ये होते हैं प्रेमी जन, भक्त के, भगवान के प्रेमी भक्त। इस प्रकार के प्रेम जब हम लोग करते हैं तब तो वास्तविक प्रेम है भगवान के चरणों के, अन्यथा हम लोग लगे रहेंगे विभिन्नता में। भगवान में वैर भाव भी है, प्रेम भाव भी है, उसके ऊपर पता नहीं देखा जाता इस कलयुग में कि जो व्यक्ति जितना ही गलत करता है वो उतना ही फलीभूत होता है। अरे उस विचार पर तुम क्यों जाते हो? भगवान की कृपा पर निर्भर रहो ना। मनुष्य अपनी विचारधारा इस प्रकार का बना लिया है कि केवल दूसरे को देखने का प्रयास करता है। अरे तुम टटोलो, अपने को गहराई में ले जाओ। अरे कौन व्यक्ति गलत कर रहा है और उतना ही फलीभूत होता है? तुम सही रास्ते पर चलो ना। सही रास्ते पर चलोगे तो तुम ऐसे परमानेंट फलीभूत होगे कि फिर तुम उस पद से कभी च्युत नहीं हो। लेकिन संसारिक लोगों को बढ़ते हुए नजर देखा जाता है, लेकिन ऐसे गिरते हैं कि फिर पता भी नहीं चलता। हमें धीरे धीरे क्रमानुसार अनुकूल की भावना से, अनुकूल की स्थिति को स्वीकार करके और प्रतिकूल जो की जो साधने हैं भक्ति में उनको छोड़ करके हम भगवत रस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग तब तक भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हम दोनों रस, संसारिक रस और कृष्ण रस लेने के चक्कर में हैं। दोनों में, दुविधा में हम लोग दोनों तरफ चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि हम क्या किए। एक को छोड़ो, एक को पाओ। भागवत में उदाहरण दिया गया है जोंक का। भागवत में जोंक का उदाहरण दिया गया है कि जोंक जब घास के ऊपर चलती है, जल जीव है जोंक, अगर कदाचित तो जल से जब बाहर निकलती है तो अगर घास के ऊपर चलती है तो जब तक जिस शरीर के अंग से घास को पकड़ी है उस अंग को नहीं छोड़ती, जब अगले अंग से आगे वाली घास को नहीं पकड़ लेती है। मतलब एक को पकड़ी है तो अगर आगे का प्रयास है, पीछे वाला तब छोड़ी जब आगे वो पकड़ ली। हम जब तक इस संसारिक रस को छोड़ेंगे नहीं तब तक कृष्ण रस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रस नारद जी भले इस उक्ति पर आकर के हम लोगों की परीक्षण कर रहे हैं कि ये लोगों की भाव क्या है, नहीं तो नारद जी जितने भक्ति के रस लेते हैं वैराग्य भाव से उतना और कौन ले रहा है। अब प्रभुपाद जी के शब्दों में हम लोग थोड़ा इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद महाराज की अनुवाद को मैं एक बार पढ़ता हूं। नारद मुनि ने आगे बताया कि मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितने कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से मेरा, ऐसा मेरा विचार है, नारद जी का। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको क्या समझाते हैं सुने हैं कि सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णतः कृष्ण में लीन रहते हैं। अगर देखा जाए पीछे हट करके शिशुपाल और दंतवक्त्र के कथा से यह प्रसंग शुरू हुआ है, तो नारद जी का कहने का भाव तो अलग है और प्रभुपाद जी का भाव क्या है कि प्रभुपाद जी यह कहते हैं कि पूर्णतः कृष्ण में लीन रहने का यह भी एक तरीका है, लेकिन वास्तविक तरीका और मूल तरीका नहीं है। इस प्रकार से संभवतः हम अपनी सदगति कर सकते हैं, प्रभुपाद का इस प्रकार का विचार है। वहां स्टैंप नहीं लगा रहे प्रभुपाद की, बैर भाव से कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, वहां जोर नहीं दे रहे। निसंदेह वह अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन न रहने के कारण अभाव पाता है। जब तक हम अपने सर्व इंद्रिय को, या लिखेंगे आगे एक श्लोक को, माधवाचार्य जी के श्लोक को प्रभुपाद जी पिछले वाले श्लोक में भी उन्होंने कोट किया है, और एक जगह मैंने भी अपने डायरी में उसको मैं लाया हूँ, मैं उस श्लोक को बताऊंगा कि जो भी बैर भाव से भगवान की भक्ति किए उनको भी भगवान ने अपनी कृपा दिया, लेकिन वो उतनी कृपा या वह भाव या वह रस नहीं दिया जो रस प्रेम से भक्ति करने वालों को दिया। निसंदेह वह अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन न रहने का अभाव पाता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। जब वो कृष्ण का शत्रु है तो कृष्ण के जो दास हैं उनके कैसे मित्र हो सकते हैं, जबकि होना चाहिए गुरु भाई, गुरु भाई का गुरु भाई में प्रेम होना चाहिए, इष्टदेव होना है, क्योंकि सबके इष्टदेव एक ही हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का भाव यह है कि मतलब शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर के, मतलब शत्रुत्व की भावना से भगवान की उपासना करने वाले उनके प्रेमी भक्तों से बढ़कर के नहीं है। इनका कहने का अर्थ यह है प्रभुपाद जी का कि जो प्रेम से जो भक्ति की जा सकती है इस भाव से वो रस नहीं लिया जा सकता। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला पांचवें अध्याय के 205 प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी इसी विनीत भाव से अपने विषय में सोचते हैं कि जगाई मधाई हैते मुईते पापिष्ठ पुरुषे रकीट हैते मुई से लघिष्ठ। यह दैन्यता दैन्य भाव है भगवान के शुद्ध भक्तों के। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विषय में कहते हैं कि मैं जगाई तथा मधाई से भी निकृष्ट पापी हूँ, और मैं मल के कीड़े से भी घट करके हूँ। कहाँ शहर के लोगों को ये सब चीज देखने को मिले, गांव में लोग बाहर जाते हैं शौच आदि करने के लिए तो कीड़े होते हैं जो मन को पूरा गोला बना करके वो उसको लुढ़काते हुए अपने गंतव्य स्थान पर ले जाते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन है, कितना संभाल करके वो रखते हैं। अब ये उदाहरण कौन दे सकता है जो इस पूरे इस संसार की सारी स्थितियों से पूरा पूरा उबर चुका है, वो उदाहरण दे सकता है कि मैं उस कीड़े से भी नीच हूं। और हम लोग दो चार दिन से दो चार साल से माला उठा लेते हैं तो कितनी अहंकार आती है, अरे मेरे से बढ़कर के कौन है, ये भाव आता है। और इस धन्यता में इस शुद्धता में अंदर देखिए भागवत में स्पष्ट लिखा है या मेरे गुरु महाराज बार बार कहा करते हैं कि कुछ कुछ तो ऐसे उदाहरण भागवत में दिए गए हैं कि गांव के लोगों के अलावा शहर के लोग देखे भी नहीं होंगे, सुने भी, देखने की तो बात छोड़ दीजिए, सुने भी नहीं होंगे। और दिया गया उदाहरण, शुद्ध भक्त अपने को सदैव हीन समझता है, लेकिन अधकचरा भक्त क्या करता है, अपने को सदैव श्रेष्ठ समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो वे भी यही सोचती हैं कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। आप सोचिए, कोई भक्त जब भगवान के प्रेम का श्रीमती राधा रानी से प्रेम करता है तो राधा रानी ये भाव करके उस भक्त से प्रेम करती हैं कि यह मुझसे भी ज्यादा प्रेमी है। इसलिए ब्रज भूमि के अंदर एक कवि ने लिखा है कि ब्रज भूमि के अंदर भगवान ने ऐसा प्रेम भर रखा है कि को कवि वर्णन कर सके ब्रज के रज के मूल, जाके कण कण में बसे जुगल चरण की धूल। कौन कवि है अपने विद्वता के बल पर उस ब्रज भूमि की महता को वर्णन कर सकता है? ऐसी कोई भूमि खाली नहीं है जहां हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण लोटे ना हो, पांव रखे ना हो, उस भूमि पर कोई लीला न किए हो। कोई ऐसा ब्रज में कोई ऐसा जगह नहीं, इसलिए उसकी महिमा है। और उस भूमि में हम लोग क्या करते हैं, जाकर के पिकनिक मनाते जाते, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने के दृष्टि से जाते हैं। अरे तुम यहीं से उस भाव को लेकर के जाओ, विचार करके जाओ कि मैं कहां जा रहा हूं। कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो वे यह भी सोचती हैं कि यह भक्त मुझसे बढ़कर के है। सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में श्रीमती राधा रानी को याद करना चाहिए कि गुरु के सर्वश्रेष्ठ पद को उन्होंने ही स्वीकार किया है और वही हमारे प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाती है। हमारा कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, गुरु भी श्रीमती राधा रानी का प्रतिनिधि होता है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे, इसमें वो तलीन रहते हैं। अरे मरेंगे तो हम कृष्ण के हाथ मरेंगे। मामा मारीच था, रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि रावण ने उसे आदेश दिया कि तुम छद्म वेश धारण करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मामा मारीच सोच लिए कि अगर मैं अगर इसके बात का उल्लंघन करता हूँ, रावण के बात को नहीं मानता हूँ तो ये मुझे मार देगा। तो उनके मन में विचार यह आया कि अरे इसके हाथ से मरने से तो बेटर है कि हम राम के हाथ से मरे, इसलिए उस बात को स्वीकार किया। अरे मरना ही है तो हम भगवान के हाथ से क्यों नहीं मरे, अगर असुर भी बनना है तो हम रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे क्यों बने, उसके जैसा बनेंगे तब तो भगवान को आना पड़ेगा, नहीं छोटे मोटे असुर का कौन ध्यान रखेगा, कौन मारने आएगा। स्थिति यह है कि हम ज्यादा करके आगे बढ़े तो ऐसे आगे बढ़े कि भगवान को भी आना पड़े, प्रेम भी करें तो हम ऐसे प्रेमी बने कि हमें ना जाना पड़े, भगवान को हमारे पास आना पड़े। बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं, किन किन भक्तों को भगवान ने किस किस रूप में आकर के उनकी रक्षा किया और असुरों को तो देख ही रहे हैं कि तीन जन्मों से भगवान मार रहे हैं इन लोगों को, वो इतने याद करते जा रहे हैं। और वास्तव में इतना उपद्रव इसलिए असुर इस रूप में करते हैं कि जल्दी आए और हमें मारे। हम लोग वृत्रासुर का प्रसंग इसे पीछे पढ़ चुके हैं कि असुर योनि में थे लेकिन कितने उतावले थे मरने के लिए कि जल्दी इस शरीर को छोड़ना चाहते थे। और वास्तव में देखा जाए तो इस शरीर को रखने में तभी फायदा है जब हम भक्ति करें, अन्यथा जब तक जिएंगे हम लोग पाप ही करेंगे, बंधन ही अपने ऊपर उत्पन्न करेंगे। इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि हम आपकी भक्ति करके जिए, अन्यथा इस शरीर को उठा लो। यह स्थिति है। इस संबंध में मनुष्य इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को चौबीसों घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। पिछले वाले श्लोक के अंदर काय मनसा और वपुषा तीन शब्द आया है तात्पर्य के अंदर। माधवाचार्य जी के श्लोक को प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि मन से, शरीर से और वाणी से भगवान को अनवरत याद करना चाहिए। वृंदावन में दर्शित राग मार्ग में अनेक भक्त हैं, चाहे दास रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य रस, कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचार में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गवे चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करे होंगे। प्रभुपाद जी की स्थिति देखिए, प्रभुपाद कहाँ डुबकी लगाते हैं। प्रभुपाद सीधा गोपी प्रेम को और गोपी गीत के संकेतों, गोपी गीत के अर्थ को यहां संकेत कर रहे तात्पर्य के अंदर कि जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गवे चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पांवों को तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखने का साहस नहीं कर पाती, फिर भी वे ही चरण कमल कांटों से भरे जंगलों में विचरण करते हैं। गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं, यद्यपि कृष्ण उनसे दूर थे, एक घर में इस प्रकार के उनके विचार उठ रहे हैं कि कृष्ण गए हैं गाय चराने जंगल में और वो गोपी हैं गांव में घर में और चिंतन हो रही है कृष्ण के विषय। इसको कहते हैं प्रेमी भक्त, इसको कहते हैं भक्त। गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचार में मग्न रहती यद्यपि कृष्ण उनसे दूर होते। इसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतएव कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे ही माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला माँ यशोदा को, या देवकी को ऐसा माँ भगवान ने स्वीकार नहीं कर लिया। कितनी उत्कृष्ट तपस्या थी उनकी तब वो माँ बन पाए। और वैसे माँ को स्वीकार करके भगवान अपने को भी धन्य कहते हैं कि हम धन्य हैं आप जैसे माँ को प्राप्त करके। वसुदेव और देवकी से भगवान स्वयं कहते हैं, जब भगवान 11 साल के बाद देवकी और वसुदेव से मिलते हैं सारे असुरों का वध करने के बाद, तो देवकी और वसुदेव से भगवान स्वयं क्षमा मांगते हैं कि जितना कष्ट हुआ आप लोगों को, मामा कंस ने जितना कष्ट दिया वो केवल मैं ही उसका मेन कारण हूँ इतना कष्ट देने का, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान अपने माँ बाप से क्षमा मांग, ऐसे ही साधारण तरीके से भगवान किसी को भी माँ बाप नहीं स्वीकार कर ले, उसकी योग्यता होने से। ये उन आनंद विभूतियों के उदाहरण है जो कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थी। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। इस श्लोक का अर्थ खुल गया कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में नारद जी यह कह रहे हैं कि इस प्रकार के मति से जो भक्ति करते हैं वो मेरे मति से श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भाव से प्रभुपाद जी का यह मतलब निर्णय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद जी का जो कहना है यह इस श्लोक के विषय में वह अप्रत्यक्ष भाव है, प्रत्यक्ष भाव नहीं है। छिपा हुआ भाव यह है कि प्रेम से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, वह रस इस वैर भाव में नहीं है। विशेष रूप से बदजीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किस तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के विचार में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की चरम स्थिति है। अगर हम प्रेम नहीं कर पाते हैं तब यह उपाय है, लेकिन यह उपाय जब सर्वश्रेष्ठ असुर बनेंगे तब भगवान हमें मारने के लिए आ सकता है। एक माधवाचार्य जी का ऐसे तो मैं दसम स्कंद भी लाया था जिसमें गोपी प्रसंग के तात्पर्य में गोपी लोगों का जो भाव था उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब टाइम नहीं है। विरोधा भाव से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, माधवाचार्य जी ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि पौंड्रके नरके चैव सालवे कंसे च रुक्मिणी आविष्टास्तु हरेर भक्ति मक्त्या भक्त्या हरि मापिरे। यद्यपि पौंड्रक, नरकासुर, साल तथा कंस ये सभी भगवान के शत्रु थे, किंतु ये सारे राजा उनके विषय में निरंतर सोचते रहते थे, अतः उन्हीं वैसी ही मुक्ति सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। यदि भगवान के विषय में शत्रु उनका निरंतर उनका चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदा उनके सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी जाइए बिना प्रेम का गुजारा नहीं है। इस संसार में जिसको झूठा प्रेम कहते हैं उसको तो अनुभव कर चुके होंगे लोग, लेकिन वास्तविक प्रेम का हमेशा अभाव है, इसीलिए हम लोग कृष्ण को नहीं जान पा रहे। जिस दिन वास्तविक प्रेम के खोज में हम लग जाएंगे उस दिन कृष्ण को हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन खोज ही नहीं रहे, उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। नहीं तो खोजने के बाद ऐसी कोई दुर्लभ चीज नहीं है जो न मिल जाए। भगवान को भी आना पड़ेगा कि भक्त इस भाव से हमारी उपासना कर रहा है, और उसकी क्षति आपूर्ति सब कुछ वो पूरा करने जब आते हैं तो जो प्रेम करेगा तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भागवत में ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, या गोपियों ने भी इस बात को कहा है कि जैसे आँखों की रक्षा पलके करती है कि कुछ भी ऐसे दिखाओ तो बंद हो जाती हैं, किवाड़ अपने बंद कर लेती हैं, उससे भी रक्षा करने में अति सावधान अपने भक्तों के प्रति भगवान है। कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे उस भक्त का। आप सोचिए इस आंख के तरफ थोड़ा सा भी कुछ अगर आए तो अपने आप किवाड़ बंद हो जाता है। जब हम असावधान रहते हैं तब आंख में कुछ चला जाता है असावधानी के कारण, अन्यथा ये पलकें हमेशा आंख को बचाती है, रक्षा करती है। इससे भी कहीं ज्यादा सावधानी से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन हम भक्त बने तो भाव यार, हरे कृष्णा। टाइम हो गया, ऐसे ही एक दिन हम लोगों को इस संसार में घूमते फिरते मरने का टाइम आ जाएगा। इसलिए ज्यादा सुनने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। कितना कहा जाए, क्या है एक घंटे, क्या है हम लोगों के लिए पूरा जीवन, क्या ऐसे ऐसे कई जीवन भी हम लोगों के लिए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में कमी है। इसलिए एक जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हम इस जन्म ऋतु के चक्कर से हम नहीं घबरा रहे हैं कि हम इस संसार में आएंगे तो दुख होगा, लेकिन मैं इस बात से घबरा रहा हूं कि ऐसे जगह जन्म देना जहां हम आपको याद कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें। ये चीज, और इस प्रकार के हम भाव रखेंगे तो भगवान सबकी, बुरे लोगों की बुरी भावनाएं पूरा करने में जब मदद कर देते हैं तो अच्छे भाव से भक्ति करने वाले भक्त की भावना को भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई ठगाना चाहते हैं तो भगवान उसके पास ठग भेजते हैं, और जो अपने को बचाने के लिए हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं, जाओ बचाओ। ये चीज, हम लोगों का जीवन बहुत ही कम है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और नहीं तो देखा जाए तो परीक्षित महाराज से तो ज्यादा समय है हम लोगों के पास। उनके लिए निश्चित 7 दिन की अवधि थी, स्टैंप लगा हुआ था कि उससे पहले नहीं मरोगे, लेकिन हमारा तो कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम लोग कितने साल बीत रहे हैं तो उसमें और आगे तीव्रता के साथ बढ़े, उस भाव को और गहराई में ले जाए, तब हम भगवत प्राप्ति में समर्थ होंगे। उनकी कृपा का अवलोकन करेंगे, याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि शब्द नहीं है कि कोई कह सकता है कितने दयालु। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, गौर हरि प्रेमानंदे।